हिंदी कहानी का समकालीन परिदृश्य। हिंदी कहानी के समकालीन परिदृश्य पर विचार करते समय मुझे सबसे पहले विजय मोहन सिंह जी की वह बात याद आती है जो उन्होंने आज से 8-9 वर्ष पूर्व कही थी। 20 साल पहले जो हम कहानियाँ लिखते थे, उस वक्त ऐसी कहानियाँ बहुत कम लिखी जा रही थीं जिनके तात्कालिक संदर्भ हों। अब कहानीकार खुला रुख अपनाने लगा है। राजनीतिक घटनाओं, तात्कालिक सूचनाओं, मीडिया और विज्ञापन, इन सब का जो विस्फोट हुआ है, उसने हमारे पूरे भावबोध का, संवेदना का, चेतना का, हमारी समझ का काफ़ी कुछ ध्वस्त किया है। इसी के साथ ही पिछले कुछ वर्षों में सामने आ रही हिंदी कहानी के संबंध में वह एक अन्य बात की ओर इशारा करते हैं। मैं डिक्शन को बहुत महत्वपूर्ण मानता हूँ। जिसने अपना कोई बड़ा डिक्शन नहीं दिया, वह बड़ा कवि या कथाकार नहीं हो सकता। फिलहाल मुझे लगता है कि आज का कथाकार अपना कोई डिक्शन या शिल्प देने में समर्थ नहीं हुआ है। विजय मोहन सिंह जी का यह कथन उचित प्रतीत होता है। यह सही है कि इधर के कहानीकार अपना कोई डिक्शन तो नहीं दे पाए, किंतु फिर भी स्वयं प्रकाश, उदय प्रकाश, पंकज बिष्ट, संजीव, शिवमूर्ति, अखिलेश, महेश कटारे, देवेंद्र और विजय दानदेथा की कहानियाँ पाठकों का ध्यान अवश्य विकेंद्रित करती हैं। इन कहानीकारों की कहानियाँ मात्र ध्यान ही विकेंद्रित नहीं करती, अपितु उदय प्रकाश तथा विजय दानदेथा ने कुछ ऐसी कहानियाँ इधर हिंदी कहानी को दी हैं जो पूर्ववर्ती कहानीकारों तथा अपने समकालीन कहानीकारों में उनकी एक अलग पहचान बनाती है। बहुत बार तो ऐसा भी लगता है कि इनकी कहानियों को क्रॉस करके ही आज की कहानी लिखी जा सकती है। स्वयं प्रकाश ने जहां बलि, गौरी का गुस्सा, कहां जाओगे बाबा, नीलकांत का सफ़र, पिताजी का समय तथा क्या तुमने कभी कोई सरदार भिखारी देखा है जैसी बार बार पढ़ी जाने वाली कहानियां हिंदी साहित्य को दी, वहां उदय प्रकाश ने टेपचू, तिरिच, 56 तोड़े का करधन, पीली छतरी वाली लड़की, थर्ड डिग्री और अंत में प्रार्थना तथा वारन हेस्टिंग का शरण और दिल्ली की दीवार जैसी स्थायी महत्व की कहानियाँ हिंदी पाठक को दी हैं। विजय दानदेथा की आशा, अमरधन, सपन प्रिया, रजवंती, दूजो कबीर तथा भगवान की मौत जैसी कहानियाँ हिंदी कहानी की स्थायी उपलब्धि कही जा सकती हैं। इन कहानियों को तात्कालिक घटनाओं की परिणति नहीं कहा जा सकता। ये कहानियाँ हमारे भावबोध का, हमारी संवेदना का विस्तार करने वाली कहानियाँ हैं। हमारी चेतना को झकझोरने वाली, हमारे जीवन क्रम में हस्तक्षेप करने वाली कहानियाँ हैं। इन कहानीकारों के अतिरिक्त कुछ अन्य कहानीकार जो कहानी लेखन में सक्रिय हैं, वे भी बदलते सामाजिक यथार्थ को कहानियों के माध्यम से अभिव्यक्त कर रहे हैं। यद्यपि राजेश जोशी 8वें दशक की कहानियों को बेहतर कहानियाँ कहते हुए 9वें दशक की कहानियों को कमज़ोर कहानियाँ कहते हैं, उनका कहना है कि 8वें दशक की कहानियों के पास एक विजन था, एक साफ दृष्टि थी, लेकिन 9वें दशक के कहानीकार की दृष्टि साफ नहीं है। इन कहानियों का अंदाज गैर राजनीतिक सा लगता है। इधर लिखी जा रही कहानियों में से सार्थक कहानी किसी कहा जा सकता है, इसके संबंध में चंचल चौहान का कथन उल्लेखनीय है। चंचल चौहान कहते हैं कि आज भी सार्थक कहानी वही बन पाती है जिसमें कोई अर्थवत्ता होती है। देर सवेर सार्थक कहानी की पहचान हो ही जाती है और समाज उसे चर्चा के द्वारा याद करता रहता है। उसने कहा था से लेकर पाल गोमरा का स्कूटर तक, ऐसी ही कहानियां साहित्यिक धारा में उभर कर आ जाती हैं जिनमें अपने समय के यथार्थ की पकड़ और नई से नई टेक्निक का इस्तेमाल होता है तथा इस समाज को बेहतर देखने की एक विश्व दृष्टि होती है। इन तीनों तत्वों में से एक भी नदारद होता है तो कहानी कमज़ोर हो जाती है। इन तीनों तत्वों में से किसी का भी अतिवादी आग्रह कहानी का सत्यानाश कर सकता है। इसे और स्पष्ट करते हुए चंचल चौहान कहते हैं, अगर कोई यथार्थ को इतना विशिष्ट बना देता है कि वह सार्वभौमिक न होकर अपवाद लगने लगता है तो कहानी कोरी गप्पा लगने लगती है और उसको सत्य कथा की तरह ही कहानी कहा जा सकता है। शिवमूर्ति की कसाईवाड़ा या तिरिया चरित्र, सुरंजय की कामरेड का कोट जैसी कहानियाँ इसी श्रेणी की हैं। इसी तरह सिर्फ टेक्निक या प्रयोगधर्मिता पर बल देने से भी संतुलन बिगड़ जाता है और कहानी गड़बड़ा जाती है। रमेश उपाध्याय की किसी देश के लिए किसी मशहूर किसी शहर में ये कहानियाँ इसी अतिवाद की शिकार कही जा सकती हैं। इसी तरह सिर्फ विश्व दृष्टि या जीवन दृष्टि को यांत्रिक ढंग से कहानी में डालने से भी कहानी को नुकसान होता है। मेरे विचार से कहानी सार्थक निरर्थक अच्छी बुरी नहीं होती, वह या तो कहानी होती है या फिर कहानी नहीं होती। कहानी पढ़ लेने के बाद पाठक कह उठता है कि वह कहानी नहीं बनी। मुझे लगता है कि आज का समय सुधीर घोषाल, देवी सिंह कौन और टिम्पचू का समय नहीं, वह टुंड्रा प्रदेश, मुक्ति और ब्लैक होल का भी नहीं है। वह वारन हेस्टिंग का सांड, पीली छतरी वाली लड़की, तिरिच, भगवान की मौत और कुछ कुछ बड़ी अम्मा तथा पिताजी का समय है। हम सभी रघुनंदन त्रिवेदी की तरह ऐसी आस्था तो अवश्य पालते हैं कि एक दिन राम बाबू झाड़ी लांग जाएंगे, लेकिन इस खतरनाक समय में बलि की लड़की की तरह हमारे पास आत्महत्या करने के अतिरिक्त कोई दूसरा विकल्प नहीं। इधर लिखी जा रही कहानियों को पढ़ने के बाद लगता है कि न तो हरि भटनागर की चिरौंटों की जंग कुछ कर पाती है और न ही अरुण प्रकाश का ITO पुल के नीचे रचा गया गज पुराण ही पाठक में कोई सृजनात्मक प्रतिक्रिया उत्पन्न कर पाता है। बहुत बार लगता है कि हमारे शैशव की शरारतों का मरना हमारे भविष्य के सपनों का मरना है। ऐसे में त्रिपुरारी शर्मा की जूते, गौरीनाथ की महागिद्ध और अंकित की आखिरी बार जैसी कहानियाँ कुछ कुछ आश्वस्त करती हैं, लेकिन मोहनदास नैमिष राय ने शोषण और उत्पीड़न से मुक्ति का जो रास्ता अपना गांव बसाकर खोजा है, ऐसा गांव जो केवल दलितों का हो, जहां दलितों की अपनी पुलिस हो, दलितों का अपना राज्य हो, वह मेरी दृष्टि में उचित नहीं। मोहनदास नैमिष राय के उस अपने गांव में रहने वाले मनुष्य की स्थिति एक थियांदर की ही होगी। इधर दलित विमर्श को लेकर जितना कुछ लिखा जा रहा है उसके संबंध में भगवान सिंह ने एक सही टिप्पणी की है। वह लिखते हैं, जो कुछ जैसा है वैसा ही लिख देना साहित्य को पागलखाना बनाने जैसा ही होगा। हिंदी कहानी को विजय दानदेथा से बहुत कुछ सीखने की जरूरत है, फिर चाहे वह दलित विमर्श हो या स्त्री विमर्श अथवा कथा विमर्श। पुण्य सिंह ने कुत्ते, गधे और कौवे को लेकर काना कौवा शीर्षक से कहानी लिखने की कोशिश अवश्य की थी, लेकिन वह कानी कहानी बनकर ही रह गई। भला कहाँ विजय दानदेथा की कहानी कागमुनि और कहाँ काना कौवा। इधर लिखी जा रही कहानी में से जो कहानीपन समाप्त हो रहा है उसके प्रति केवल मैं ही चिंतित नहीं हूँ, बल्कि मेरे जैसे और भी हैं जो उसकी वापसी की प्रतीक्षा में है। अभी मैंने जूते कहानी की जिस कथा लेखिका का जिक्र किया था वह अपनी कहानियों के संबंध में विचार व्यक्त करते हुए कहती हैं, कहानी से जो कहानीपन कम हो गया है उसकी वापसी बहुत जरूरी है। यह सही है कि भाषा अभिव्यक्ति और साहित्य के विभिन्न रूपों के बीच कोई बहुत सख्त हदबंदी नहीं हो सकती, उनकी हदें टूटती हैं और जरूरी हो तो उन्हें तोड़ना भी चाहिए, लेकिन यह देखना चाहिए कि ऐसा करने से साहित्य की कोई विधा बेहतर बन रही है या खराब हो रही है। मसलन अखबार पढ़ने का अपना मजा है, लेकिन कहानी पढ़ते समय मुझे अखबार का नहीं कहानी का ही मज़ा मिलना चाहिए। कहानी की प्रेरणा आप कहीं से भी लें, वह कहानी में कहानीपन कराना जरूरी है। इसी तरह से स्त्री साहित्य तथा दलित साहित्य के संबंध में बहुत स्पष्ट शब्दों में कहती हैं, कई बार हम स्वयं को स्त्रीवादी या दलितवादी प्रमाणित करने के लिए या केवल समकालीन होने के लिए या एक अतिरिक्त कर्तव्य बोध से प्रेरित होकर कि इस विषय पर हमें कहानी लिखनी चाहिए जल्दबाजी में बहुत कुछ कर जाते हैं और इसको नाम देने लगते हैं कि वह स्त्री साहित्य है या दलित साहित्य। मेरे विचार से कहानी की या साहित्य की रचना प्रक्रिया इस तरह की नहीं होती, इस तरह चीज़ें सतही हो जाती हैं, जबकि साहित्यिक रचना में एक गहराई होनी चाहिए, एक कलात्मक स्तर तक उसे पहुंचना चाहिए। लेखक को जब अपनी रचना में उस गहराई की या उस कलात्मक स्तर की जरूरत महसूस होने लगती है तब विचारधारा से पाई हुई दृष्टि उसकी सहायता तो करती है, लेकिन वह खुद बीच में आकर जबरदस्ती प्रकट नहीं होती और इस तरह जो रचना बनती है वह कई बार उस विचारधारा से भी बड़ी हो जाती है और ज़्यादा मूल्यवान हो जाती है। हिंदी कहानी के समकालीन परिदृश्य को देखते हुए कुछ लोगों का कहना है कि उसमें एक ठहराव आ गया है, वह डायरी संस्मरण निबंध हो गई है या फिर इन सब का मिला जुला रूप, लेकिन कहानी नहीं रही, वह अपना कहानीपन खो चुकी है। हम देखते हैं कि कथादेश, कथाक्रम, कथन, हंस, वर्तमान साहित्य, तद्भव, नया ज्ञानोदय तथा वागर्थ आदि पत्रिकाओं में कहानियों के नाम से कहानियां तो बेशुमार छप रही हैं, किंतु उनमें से अधिकांश में कहानी नहीं है। फिर भी हम कह सकते हैं कि कुछ कहानीकार ऐसे हैं जिनकी कहानियों को हम एक बार नहीं बार बार पढ़ना चाहते हैं। कहानी आज भावोत्तेजक नहीं विचारोत्तेजक विधा है, और इस विचारोत्तेजक विधा के आगे आज की पूंजीवाद ने न केवल हिंदी कहानी के आगे अपितु दुनिया की तमाम भाषाओं की कहानियों के आगे अवरोध खड़े कर दिए हैं। इसके संबंध में बिंदु भास्कर ने एक दिलचस्प बात कही है कि आज के पूंजीवादी भूमंडलीकरण ने कहानी के सामने यह चुनौती रख दी है कि वह या तो बाजारू होकर कहानी से बाजार से समझौता कर ले या बाजार से बाहर हो जाए। अब यह तो कहानीकारों पर निर्भर करता है कि वे क्या करते हैं। यह कोरा साहित्यिक, कलात्मक या सौंदर्य शास्त्रीय प्रश्न नहीं, बल्कि बहुत बड़ा सामाजिक, सांस्कृतिक, नैतिक और राजनीतिक प्रश्न भी है। और इस प्रश्न का उत्तर तभी दिया जा सकता है जब हम बाजार नामक जगह के बारे में यह तय करें कि हमें इसके मुताबिक ढलना है या दुनिया को बेहतर बनाने के लिए इसको बदलना है। जाहिर है इस जगह को बदलना बड़ा मुश्किल काम है, क्योंकि इस पर फिलहाल जिनका कब्जा है वे वही हैं जो कल तक साम्राज्यवाद कहलाते थे, आज भूमंडलीय पूंजीवाद कहलाते हैं। वे पहले सारी दुनिया में अपने उपनिवेश बनाते थे, आज सारी दुनिया में अपने बाजार बनाते हैं। अब कहानी लिखना उन्हीं से लड़ना है। यहाँ तक ध्यान रखना भी निहायत ज़रूरी है कि इस लड़ाई में कहीं कहानी ही लहूलुहान होकर बदशक्ल न हो जाए और हम उसे कहानी न कहकर कहानी का लहना कहने लगे। अंत में हिंदी कहानी के समकालीन परिदृश्य पर मैं अपनी बात एक विदेशी लोक कथा के माध्यम से समाप्त करना चाहूँगा। यह लोक कथा ऑस्ट्रेलिया के आदिवासियों में प्रचलित है। मुझे लगता है कि हजारों वर्ष पहले की यह कथा न केवल ऑस्ट्रेलिया की अपितु हमारी आज की कथा है। कहते हैं कि बहुत समय पहले इस धरती पर आसमान बहुत नीचा हुआ करता था, इतना नीचा कि इस धरती पर रहने वाला प्रत्येक मनुष्य अपना सिर उठाकर नहीं चल सकता था। तब इस धरती पर इतना अंधेरा था कि मनुष्य को इस धरती पर अपना पेट भरने के लिए जड़ी बूटियों भी अपने हाथों से टटोल टटोल कर खोजनी पड़ती थी। ऐसे समय पक्षियों को यह ख्याल आया कि यदि किसी तरह से इस आसमान को धकेल कर ऊँचा कर दिया जाए तो इस धरती पर रहने वाले मनुष्य सिर उठाकर चल सकेंगे। और कहते हैं कि पक्षियों ने लंबे लंबे तिनके इकट्ठे किए और अपना जोर लगाकर आसमान को ऊपर उठाना शुरू किया, और आसमान सचमुच ऊपर उठ गया। मनुष्य सिर उठाकर पूरी तरह खड़े होकर चलने लगने। सूरज भी सामने आ गया और पूरी धरती पर रोशनी हो गई। इस कथा के आधार पर मैं पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि इस देश में आज भी ऐसे कहानीकार मौजूद हैं जो अपनी अपनी कलमों से आसमान को ऊपर उठाने में लगे हैं। एक उम्मीद है कि वे इसे ऊपर उठाने में उन पक्षियों की तरह अवश्य कामयाब होंगे। वैसे सही मायने में अभी इस धरती पर आसमान भी इतना नीचे नहीं आया है।